कोई हीरा है कोई पत्थर, धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है।
नमस्कार दर्शकों, नैतिक मूल्यों की यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संसार में ये कलह कलेश इतने हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मनुष्य मनुष्य में इतना अंतर क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है, जीवन में नैतिक मूल्यों का अभाव। साइंस ने भी देखिए, आज मनुष्य के जीवन में तरह तरह की मशीनें देकर उसके कार्य को सहज तो बना दिया है, लेकिन दूसरी ओर मनुष्य का हृदय मशीन की तरह हो गया है। उसके हृदय में दया करुणा जैसी भावनाएं मिट सी गई है। तो चलिए इन नैतिक मूल्यों पर हम चिंतन करें, चर्चा करें। आज के हमारे चर्चा का विषय है दया, द वर्च्यू ऑफ काइंडनेस। और इस विषय पर हमारे साथ अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्टूडियो में पधारी हैं बीके ममता बेन। ममता बेन, ओम शांति। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
दर्शकों, बीके ममता बहन 40 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ी हुई है। आप राजस्थान अलवर से हैं और 33 वर्षों से समर्पित रूप से इस आध्यात्मिक संस्था में अपनी सेवाएं दे रही है। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के। तो दीदी, दया जिस वर्च्यू पर आज हम बात करने जा रहे हैं, इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? दया है क्या? क्या रहम करना या किसी पर करुणा भाव रखना, दया को कैसे परिभाषित करेंगे आप?
सबसे बड़ी बात तो है, आज के समय में मनुष्य जीवन में दिव्य गुण हो, मानव मूल्य हो।
जी,
जैसे आज हम अपने समाज की स्थिति देख रहे हैं, तो समझ में आता है कि समय की ये पुकार है कि मनुष्य का जीवन मूल्यनिष्ठ हो।
जी,
जैसे किसी सरोवर की शोभा कमल के पुष्पों से होती है, ऐसे किसी भी मनुष्य के जीवन में मूल्यों का भी उतना ही महत्व है।
बिल्कुल।
और मैं तो ये महसूस करती हूँ कि परमात्मा ने जो मनुष्यों को रचा है,
जी,
सभी जीवों से उन्हें सर्वोत्तम और भिन्न इसलिए कहा है कि हमारे जीवन में मानव मूल्य हो।
बिल्कुल सही।
तो दया भी एक ऐसा सुंदर मूल्य है जिसको मुझे अनुभव होता कि जिसे मानव सच्चे अर्थ में मानव बनता है।
जी,
दया की सरल परिभाषा ये है कि किसी भी दुखी और पीड़ित मनुष्य को देखकर उसकी पीड़ा को हम महसूस करें।
जी,
अनुभव करें।
जी,
दया की दूसरी सरल परिभाषा है, जो दुख में है, दुविधा में है, पीड़ा में है,
जी,
उसको मदद करने लिए हमारी अंतर मन से प्रेरणा हो, इच्छा हो।
बिल्कुल।
दया की तीसरी सुंदर सरल परिभाषा है कि हम जब व्यवहार में आते हैं तो हम हरेक मनुष्य के साथ यही समझे जो मुझे अपने अपने लिए लगता है या अपनों के लिए लगता है।
जी,
दया का एक सुंदर अर्थ है कि जैसी फीलिंग मुझे दूसरों के व्यवहार से खुद को होती है, ऐसे में अपने व्यवहार से दूसरों को भी होती है।
बिल्कुल सही।
ये महसूस करो।
जी जी।
और खाली अपने ही नहीं, अपनों को तो सभी दया के भाव से, मदद करने के भाव से सदा आगे रखते हैं, लेकिन संसार के सभी जीवों के प्रति
जी
हमारा ऐसा समान दृष्टिकोण हो जो हम सबको ही दया भाव से उनकी जो दुख पीड़ाएं हैं उसको महसूस भी कर सके और उनके दुख दर्द में मदद करने की, सहयोग करने की भावना भी हमारी
जी,
बने।
जी दीदी, बहुत सुंदर तरीके से आपने परिभाषित किया दया को। लेकिन आज संसार का वातावरण कुछ अलग ही है, कठोरता इतनी आ गई है, कठोरता किसी को प्रिय नहीं होती है। और जिसके मन में दया हो, करुणा भाव हो, ऐसे मनुष्य आज कहाँ? तो क्या कारण है अपनी वृत्ति में वो रह नहीं गई है भावनाएं, दया रह नहीं गई है वृत्ति में, क्या कारण है?
सबसे बड़ा कारण तो है आज का हमारा जो आधुनिक विकास है, हरेक मनुष्य भौतिक चीजों के पीछे दौड़ रहा है।
बिल्कुल सही।
हरेक को संसार में धन साधन संपत्ति सुख सुविधा के सबसे ज्यादा कामनाएं हैं।
जी।
पर जितना जितना बाहर मुखी बने हैं, जितना जितना हम अपनी अंतर जगत से दूर हुए हैं, उतना उतना मूल्यों का ह्रास हुआ है।
जी बिल्कुल सही।
आज सारा दिन मनुष्य वो क्या करता है, उसने क्या किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है,
बस इसी
में सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता है।
बिल्कुल ठीक है।
अगर थोड़ी सी घड़ियां भी हम अपने अंतर जगत को देखें, महसूस करें। एक बहुत सुंदर अनुभूति है बहन
जी,
जब हम अपने आप से बातें करने लग जाएंगे
जी,
तो ये मूल्य हमारे भीतर है
जी।
जैसे किसी रूम में आने से हम सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं, ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य अपनी बिजी लाइफ में, व्यस्त लाइफ में भी थोड़ी घड़ियां, कुछ सेकंड्स भी अपने भीतर जाकर इन मूल्यों के स्विच ऑन करके देखे
जी,
तो निश्चित ही जो शाश्वत मूल्य है, मानवीय मूल्य है, अविनाशी मूल्य है, जो हमारे नेचर में है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम पत्थर नहीं है, हम कोई जड़ चीज नहीं है,
भावनाएं हैं
हर मनुष्य के भीतर, भावनाएं हर एक में महसूस सभी करते हैं
जी।
लेकिन जरूरत है अंतर की ओर जाने की। बहन हमें बहुत अच्छे से अनुभव करते हैं कि जैसे एक के बाह्य जगत है, लेकिन उससे भी अधिक शक्तिशाली वो मनुष्य का अंतर जगत है
जी, जिसके लिए आज उसके पास टाइम ही नहीं, वो अवेयर ही नहीं है कि हमें खुद में भी झांकना कितना जरूरी है। जी बिल्कुल,
हम सबको मिलकर यही प्रयास करना चाहिए
जी,
कि हम थोड़ा सा अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने लिए
जी जी,
जो मानवीय मूल्य, सत्य मूल्य हर एक के भीतर है, उसको जागृत करने के लिए थोड़ा समय खुद के लिए निकाले
जी जी बिल्कुल,
अपने आप को देखे, अपने आप से बातें करें, कुछ पल शांत और एकांत में बैठकर स्वयं के बारे में सोचे
जी,
तो जरूर अंदर जो शाश्वत मूल्य है हम उसे समाज में ला सकते हैं।
हम अपने अंदर पहले वो मूल्यों की कमी को पूरा कर सकते हैं, तभी नैतिकता समाज में भी ला सकते हैं जी। तो जो दयावान व्यक्ति है जिसके अंदर ये नैतिक मूल्य है, उसकी क्या विशेषताएं होंगी?
दयावान व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वो दया के साथ साथ और गुणों से भी संपन्न होता है
जी।
खाली दया से भी हम सब कुछ नहीं कर सकते
जी,
हैं
जी।
लेकिन दयावान मनुष्य सबसे ज्यादा दूसरों को मदद करने की भावना रखता है। दया अपने साथ त्याग भी लाती है, वो अपना कोई चांस छोड़ना भी पड़े तो छोड़ सकता है
जी।
दयावान मनुष्य अपना ही तन मन धन औरों की मदद और कल्याण के लिए खुशी खुशी से खर्च कर सकता है
जी, बिल्कुल।
जब दिल में दया होती है तभी हम अपने से छोटे, अपने समान या समाज के सभी वर्गों के प्रति अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। जैसे मैं ये अनुभव करती हूँ बहन
जी,
दया के लिए सबसे ज्यादा हमको ये सोचना चाहिए कि आज के समाज में विशेष जो कन्याएं, माताएं या महिलाएं हैं, उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण सदा ही दया भाव से प्रेरित हो
जी।
दूसरी बात है, जो बुजुर्ग होते हैं, आयु में जो वृद्ध होते हैं, उनके प्रति भी अगर हम सब युवा पीढ़ी या समाज या परिवार दिल में दया या रहम का भाव रख, उनकी सुख सुविधा का भी ख्याल करे, उनके प्रति भी सेवा करे, तो दया की ये बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है
जी। उसके लिए हमारे मन में भी आदर, रेस्पेक्ट की भावना होना जरूरी है,
दया के साथ
तभी वो फीलिंग्स आए
जी जी, और सभी मूल्य भी हो
जी।
एक बात और भी महसूस होती है
जी,
कि मनुष्य मनुष्य के प्रति तो दया करे ही, लेकिन प्राणी मात्र के लिए भी
जी,
जीव मात्र के लिए भी हमारे मन में दया का भाव होना चाहिए।
बिल्कुल ठीक।
और मैं तो यहाँ तक महसूस करती हूँ कि प्रकृति, पर्यावरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनके प्रति भी जितना हम दयावान होंगे
जी,
उनकी भी सुविधाएं और फीलिंग्स को अगर हम समझेंगे
जी,
क्योंकि दया का हार्ट ये है कि अंडरस्टैंड करना, समझना,
समझना
कि जो सामने वाला जीव है उसकी इस समय क्या फीलिंग है और मैं इसको कैसे मदद कर सकती हूँ,
तभी वो बदले में भी हमें सुख देगा,
सुख देंगे
जी। बिल्कुल,
तो दया का जो क्षेत्र है बहुत विशाल है
जी।
मानव का मानव के साथ, अपने परिवार के साथ, विशेषकर समाज में जो दो वर्ग है, माताएं बहनें और विशेष जो वृद्ध जन है, आयु में जो अनुभवी है, उनके प्रति दया का भाव, प्राणी मात्र के प्रति भी दया का भाव, जगत के पर्यावरण, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के प्रति भी दया भाव, करुणा भाव, ये मनुष्य के जीवन की शोभा है।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। और आज उसके बिल्कुल विपरीत वातावरण है, हम रोज न्यूज में सुनते हैं, खासकर महिलाओं के लिए, प्रकृति के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत कठोर और निष्ठुर हो गया है इंसान। हम इस बहुत बड़ा सर्वश्रेष्ठ नैतिक मूल्य है ये दया, लेकिन हम इसे अपनी वृत्ति में कैसे लाए, इसके लिए कोई आसान
तरीके। आपने बहुत सुंदर बात पूछी है, मैं ये सोची रही थी जी कि भाई हम चाहते तो है कि मेरे में दया का मूल्य हो, मैं दयावान बनूं। कभी कभी हम बहुत दया करते भी है, अपना सब कुछ त्याग के भी किसी की मदद करते हैं, फील भी करते हैं
जी।
लेकिन एक इंसान जो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ में है वो दयावान कैसे बने? अब उसकी बहुत सुंदर एक बात जो मैंने प्रैक्टिकल महसूस की है
जी,
कि परमपिता परमात्मा शिव दया और करुणा का सागर है।
बिल्कुल,
जब कभी हम ईश्वर को याद करते हैं, भगवान की ओर अपने मन को ले जाते हैं,
हे प्रभु दया करो,
तो यही आता है कि हे भगवान, हे दयालु, हे कृपालु, हे रहम दिल। तो इस पूरे ब्रह्मांड को अगर हम देखते हैं तो दया और करुणा का सागर स्रोत एक परमपिता परमात्मा शिव है। उन्हें दयालु, कृपालु और रहम दिल भी कहा जाता है।
बिल्कुल सही,
ईश्वर के लिए कहते समदर्शी है नाम तुम्हारा। वो सृष्टि के सभी मनुष्य आत्माओं के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है
जी,
इसलिए वो समान रूप से दयावान है।
बिल्कुल,
अगर हम संसार में रहने वाले जीव या मनुष्य अपने मन और बुद्धि का कनेक्शन उस परम शक्ति परमात्मा से जोड़ लेते हैं तो परमात्मा से मन और बुद्धि लगाने से सहज में ही ये जो अविनाशी वैल्यू है
जी,
संसार का एक बेसिक गुण है, मानव का मूल गुण जो है दया, वो हमारे में अपने आप आती जाती है। मैंने तो बहुत अनुभव किया है कि भगवान से कनेक्शन जोड़ने से हमारे में भी दया आती है
जी। मैं इसके बारे में और पूछना चाहूंगी क्योंकि आप भी स्पिरिचुअल संस्था से जुड़ी हुई है, तो स्पिरिचुअलिटी इसके लिए कैसी सहायक है कि हम इस नैतिक मूल्य को अपना सके जीवन में?
आध्यात्म ही हमें सबसे ज्यादा मदद करता है और मार्गदर्शन भी करता है,
जिसके लिए मनुष्य आज अवेयर है ही नहीं, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी उसमें है नहीं आज।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान की बातें हैं, अगर हम उस पर अपने मन को एकाग्र करते हैं तो निश्चय ही मूल्यों का विकसित होना बहुत सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। तो जैसे बताया कि भी भगवान से कनेक्शन जोड़ना अर्थात मेडिटेशन करना, राजयोग का अभ्यास करना, और अगर एक साधारण मनुष्य 10 मिनट भी प्रतिदिन अपने मन और बुद्धि को स्थिर कर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ता है तो निश्चय दया का गुण उसमें नेचुरल विकसित होने लगता है
जी।
दूसरी बात, जो आध्यात्मिक ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी में कर्म सिद्धांत की बात आती है
जी,
अगर उसको भी हम समझ लेते, जैसे आपने बोला भी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि आध्यात्मिक समझ जितनी हमारी गहरी होती है
जी,
उतना प्रैक्टिकल लाइफ में मूल्य दिखाई देते हैं। तो अगर हम अपने जीवन का अमूल्य समय, जैसे और सभी कार्य भी करते हैं और करने सब कुछ चाहिए लेकिन थोड़ा सा टाइम, बहुत थोड़ा सा समय अगर हम स्व के प्रति मेडिटेशन का अभ्यास करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी की स्टडी के लिए देते हैं तो जो आपने एक बात की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, वो हमारे में आती है। और एक और एकमात्र आध्यात्मिकता ही ऐसा मार्ग है जो हमें इन मूल्यों की ओर ले जाता है
जी। बिल्कुल, संसार में हम कई वस्तुओं को मूल्य देते हैं लेकिन ये जो नैतिक मूल्य है ये कितनी भी करोड़ों कीमत देकर भी खरीदी नहीं जा सकती है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आध्यात्मिकता ही इसका एकमात्र मार्ग है। कभी कभी ऐसा होता है दीदी संबंधों में, जैसे किसी ने रूखा बोल दिया, उदाहरणार्थ कोई रूखा बोलता है या आपके काम के लिए मना कर देता है, ये उसका दुर्गुण है। लेकिन उसके दुर्गुण को हम अपने मन में बिठा लेते हैं और हम भारी हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि मैं भी इसे सीधा करूंगा, इसे सबक सिखाऊंगा। तो ऐसी चीजें हम कैसे इमोशंस को मेंटेन करें, वो दया की वृत्ति, वो भावना कैसे हम इसको बढ़ाएं?
बहुत अच्छी बात है। व्यवहार में ऐसे होता है कभी कभी, जैसे आपने कहा कि हम जिस पर मानो दया करते हैं
जी,
लेकिन उनका हमारे प्रति रिएक्शन ज्यादा अच्छा नहीं होता है। अभी अभी 5-7 दिन पहले हमने एक बहुत प्रैक्टिकल केस बताती हूँ कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने अपने गांव में जो कुछ बहुत गरीब ऐसे बच्चे थे, लड़के थे, जी। उन पर दया करके उनको बहुत रहता था कि मेरे गांव के बच्चों की प्रोग्रेस हो और उनको काम मिले, तो अपने पास लाया उन्होंने। मैंने उनका अनुभव सुना, वो खुद बता रही थी कि मैंने उनको 15 वर्ष अपने पास रख के पढ़ाया, खिलाया, पिलाया, अपनी फैक्ट्री में काम दिया, लेकिन अब वो यूनियन बनाकर मेरा ही विरोध भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या समझे, क्या दया करना अच्छा है या दया नहीं करनी चाहिए? तो एक बहुत अच्छी अनुभूति मैं स्वयं की बताऊंगी कि संसार में दया एक बहुत पॉजिटिव पावरफुल फीलिंग है
जी।
और अगर मनुष्य कोई भी पॉजिटिव और पावरफुल फीलिंग में रहता है तो उसका जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव ही आना है,
बिल्कुल सही,
पावरफुल ही आना है
जी।
अगर दूसरा व्यक्ति मानो हमारी दया का, हमारी सद्भावना का, हमारी मदद का यथार्थ लाभ न लेके उसका नेगेटिव रिएक्ट भी करता है
जी,
लेकिन हमें उस नेगेटिविटी की फीलिंग से ऊपर उठ जाना है, क्योंकि दया ही तो महानता है,
वही मुश्किल होता है जी।
दया छोड़ना आसान है लेकिन दया को बनाए रखने में ही मेहनत है। इसे देखो तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी बात कही है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण।
बिल्कुल सही।
ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की वाणी की एक बहुत सुंदर बात है
जी।
मम्मा कहती थी कि अगर कोई दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ने के प्रति दृढ़ है
जी,
या अगर कोई नेगेटिव एटीट्यूड वाला मनुष्य अपनी नेगेटिविटी को नहीं त्यागने के लिए कृत संकल्प है, वो नहीं छोड़ रहा है
जी,
तो जो पॉजिटिव मनुष्य है जिसमें दया है, करुणा है, मदद करने का भाव है, उसको भी अपनी पॉजिटिव बातों में उतना ही दृढ़ होना चाहिए।
दृढ़ होना है, बिल्कुल सही।
किसी के भी नेगेटिव व्यवहार से प्रभावित होकर हमें अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ये एक ईश्वर का संदेश है कि बच्चे आप जैसा सोचेंगे, जैसे कर्म करेंगे, उसके परिणाम वैसे ही होंगे, जैसे विचार करेंगे वैसा ही आपका जीवन बनेगा। इसलिए दया करुणा के ये शाश्वत मूल्य कभी न छोड़िए, क्योंकि उनका प्रतिभाव, अंतिम प्रतिभाव सदा पॉजिटिव ही होना है।
जी जी, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं। इसका समाज में, इस मूल्य का समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, संबंधों में, समाज में?
आजकल जो संबंधों की स्थिति हम देख रहे हैं
जी,
या जो मैं तो कहूंगी कि जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स है
जी,
चाहे वो हिंसा है, क्रोध है, अत्याचार है, शोषण है, इन सब का एक मूल कारण है कि हम दया से दूर हो गए
जी।
कभी कभी तो लगता है एक मनुष्य होकर इतना क्रूर हम कैसे हो सकते हैं
अपने के साथ भी। बहुत भयंकर स्थिति है आज समाज में,
जिसकी कल्पना भी हम कभी नहीं कर सकते,
बिल्कुल नहीं,
ऐसी स्थिति है
जी।
तो समझ में तो यही आता है कि जब तक इंसान इंसान नहीं बनेंगे, जब तक वो शाश्वत मानवीय मूल्यों के प्रहरी नहीं बनेंगे
जी,
तब तक कि समाज में सुखद परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल है
जी।
तो हम सबको मिलकर, एक एक को मिलकर, हर व्यक्ति की ये सामाजिक जिम्मेवारी है
जी,
कि हम इन मूल्यों को जीवन में संवर्धन करें, इनकी रक्षा करें। इसी में समाज का कल्याण है, परिवार का कल्याण है,
बिल्कुल,
व्यक्ति का कल्याण है, राष्ट्र का भी कल्याण है
जी।
तो सोशल रूप से अगर हम देखते हैं तो सामाजिक परिवेश में जिस उत्थान की हम सब चाहना रखते हैं वो तभी संभव है जब हम दया, करुणा, एक दूसरे के प्रति रहम भाव, मदद करना, सहयोग देना, इन मूल्यों को प्राथमिकता देंगे
जी,
और उन्हें दृढ़ता पूर्वक अपनाएंगे, कैसा भी रिएक्शन हो, लेकिन हम कभी भी अपना मूल्यों का मार्ग नहीं छोड़ेंगे
जी। हमें दृढ़ होना बहुत जरूरी है अपने मार्ग पे जी। बिल्कुल ठीक। मैं चाहूंगी दीदी कि आप हमारे दर्शकों को इस मूल्य पर और इसके महत्व पर प्रकाश डालने के लिए कोई ऐतिहासिक घटना, उदाहरण, या आपके निजी जीवन का कोई अनुभव हमसे शेयर कीजिए।
जैसे मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा महसूस किया है कि जितना हम दया भाव रखकर अपने साथियों को, अपने परिवारजनों को, सबसे बड़ी बात होती है एक व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ आसपास हमारा परिवार होता है,
बिल्कुल,
साथ साथ में हम जिस समाज में रहते तो समाज में भी अनेक लोगों के संपर्क में आते हैं। हम जिनके साथ काम करते हैं वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, वहाँ भी बहुत सारे लोग रोज हमारे संपर्क में आते हैं
जी।
तो विशेषकर जो हमारे से छोटे हैं, पद पोजीशन के हिसाब से भी जो हमारे अंडर में है, जो हमारे नीचे है, सामाजिक रूप से हम समझते जो असमर्थ है, असहाय है, उनकी मदद करने की भावना हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए
जी।
तो मैं दर्शकों को विशेष ये बात कहना चाहूंगी
जी
कि हम अपने परिवार से शुरू करें, अपने साथियों के साथ, अपने कार्यक्षेत्र में जिनके बीच में हम होते हैं उन लोगों के साथ
जी,
अगर हम समाज में हैं तो समाज में समान वाले छोटे लोगों के साथ
जी,
अगर मैं घर में हूं तो घर में काम करने वाले एक छोटे से छोटे अगर नौकर भी मैंने रखा है तो उससे शुरू करके
जी,
मेरे रियल फैमिली मेंबर्स जिनसे मेरा संबंध है उन तक के साथ हम अपने व्यवहार में सदा ही दया भाव को रखें
जी। बहुत सुंदर।
एक बात ये बहुत मैंने महसूस की है, दया हम तब नहीं कर सकते हैं जब हमारे में अपना ईगो होता है या आवेश होता है,
बिल्कुल ठीक,
ये दया के दुश्मन है।
जहाँ कठोरता वहाँ 100% अहंकार है और ऐसे व्यक्ति को कोई सपोर्ट भी नहीं करना चाहेगा
जी, जी। बल्कि मैंने तो खुद के जैसे अनुभव की बात आप कहते हैं कि अगर हम नम्र भाव से, नरम दिल से, रहम दिल से किसी को सहायता करते हैं
जी,
एक ये जरूर है जैसे आपने पहले पूछा कि कभी कभी क्या होता है शुरू में उनका कोई नेगेटिव रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन अगर हम धीरज पूर्वक इन मूल्यों की ओर ध्यान देते हैं तो मेरी लाइफ का अनुभव है कि जिसके साथ मैंने अच्छा किया, जिसकी मैंने मदद की, उसने थोड़ा टाइम जरूर लिया लेकिन उसने पॉजिटिव रिस्पांस भी जरूर दिया
जी, जी।
वही हुआ जो हमारी शुभ भावनाएं थी, श्रेष्ठ भावनाएं थी, श्रेष्ठ विचार थे। दया फलीभूत तब नहीं होती है जब हम स्वार्थी हो जाते हैं
जी, जी।
या अपनी ही बात को राइट समझते हैं या अपना ही लाभ देखने लग जाते हैं। आज समाज में बहन दया का क्यों ह्रास हो रहा है, लोप हो रहा है, क्योंकि मनुष्य बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। व्यक्ति सोचता है मैं और मेरा परिवार, इससे आगे उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर एक मनुष्य स्वयं से ऊपर उठ के विश्व को अपने परिवार की तरह देखे, खाली जिनसे नजदीक संबंध है वो नहीं, लेकिन मेरे नौकर चाकर, मेरे संगी साथी
जी,
अगर मैं कोई दफ्तर में हूँ तो मेरे साथ काम करने वाले लोग ये सभी मेरे जी, अपने
जी,
तो अपनेपन का भाव अगर सबके प्रति होता है, भेदभाव नहीं होता है, तो दया विकसित होती है।
बिल्कुल ठीक कहा आपकी बातों से। मैं समझ पा रही हूँ कि कुछ और क्वालिटीज की हमें जरूरत है इस नैतिक मूल्य को अपनाने के लिए, जैसे आपने कहा धीरज, रिस्पेक्ट, समझना, अपनापन। मैं जानना चाहूंगी हमें इस नैतिक मूल्य को अपने जीवन में धारण करने के लिए और क्या क्या क्वालिटीज की जरूरत है।
जैसे आपने बताया कि भाई नम्रता इसमें बहुत मदद करती है, हमारा नेचर जितना पोलाइट होता है तो दया उस नम्रता के साथ साथ विकसित होती है
जी। जी
तो जैसे कोई वृक्ष भी होता है तो उसको बीज के साथ धरती भी ठीक होनी चाहिए, पानी भी मिलना चाहिए, धूप भी मिलनी चाहिए, तो सभी बातें जब ठीक होती है तो पौधे का विकास होता है
जी।
तो दया एक बहुत खूबसूरत मूल्य है
जी,
जो इस संसार के मनुष्यों की शान है, शोभा है, शक्ति है
जी।
हिंसा करना शक्ति नहीं है लेकिन दया शक्ति है
जी,
है ना। लेकिन इस दया के साथ साथ अगर हम नम्रता पर ध्यान देते हैं
जी,
दूसरों को समझने की बात पर ध्यान देते हैं, ये मेरी पर्सनल स्टडी है
जी।
आज भी मैं देखती हूँ कि अगर इस व्यक्ति ने ऐसे किया तो ऐसा क्यों किया, मैं उसको समझने की कोशिश करती हूँ,
उसके इंटेंशन को जानने की कोशिश,
इंटेंशन क्या है जी, ऐसा एटीट्यूड जो इसका है
जी,
ये ऐसा क्यों है
जी।
तो जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर होती है तो उतना हम दयावान बन सकते हैं
जी।
जितना हम अंदर से थोड़ा त्याग कर सकते हैं
जी,
ज्यादातर मनुष्य को क्या होता है कि हम चीजों को, धन साधन को पकड़ते हैं, ये भी मेरे पास हो, ये भी मेरे पास हो,
बिल्कुल।
लेकिन जितना हम त्याग करते हैं, इससे भी सबका भला हो, इस चीज से भी मैं औरों की मदद करूं, मेरे धन को भी मैं औरों के लिए भी यूज करूं तो मुझे खुशी होगी, मेरे पास जो खाने पीने की चीजें वो भी मैं शेयर करूं तो मुझे खुशी होगी, वो मुझे औरों को देना है
जी।
तो ये जो भाव है देने का भाव,
वो भी दया को विकसित करता है।
बहुत बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि जीवन में ये नैतिक मूल्य कितना सर्वश्रेष्ठ है, मूल्यवान है, और इसे हमें अपने अंदर धारण करना है तो किन किन क्वालिटीज की जरूरत है, त्याग भावना होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई, दर्शकों को ये बहुत अच्छी लगेगी कि आध्यात्मिकता ही इसका एक मार्ग है। हमें अपने लिए 10 मिनट रोज कुछ समय निकाल के अपने आप को अपने अंदर स्पिरिचुअल मेजोरिटी जागृत करनी चाहिए और नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए, तब हम दूसरों को जाकर प्रेरित कर सकते हैं। बहुत सुंदर दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपने विचार इस विषय पर रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति।
जैसा कि अभी आपने देखा, सुना और जाना कि दया, हमें दयावान बनना है, दया मांगनी नहीं है। जैसे कि परमात्मा दाता है तो हमें भी, हम भी उसकी संतान है, हमें भी दया देनी है, मांगनी नहीं है। कोई कैसा भी ना समझ अज्ञानी मनुष्य क्यों ना हो, हमें उसके प्रति शुभ चिंतक बनकर उसके प्रति दया भावना रखते हुए उस पर उपकार करना है। और हमें इसके लिए आध्यात्मिकता के मार्ग को जरूर अपनाते हुए, जैसे कि दीदी ने कहा, हम अपने लिए रोज थोड़ा सा समय निकालें और अपने अंदर इन नैतिक मूल्यों का विकास करते चले, तो ये 100% हम आशा कर सकते हैं आपसे भी और सबसे भी कि हम एक नए नैतिकता संपन्न समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ। अगले अंक में हम फिर से नए मूल्य के साथ, एक नई पर्सनालिटी के साथ फिर से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
तू दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्ना।